प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 8 मार्च 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के अखबार आपने पढ़े होंगे और सारे के सारे अखबारों की जो शुरुआत हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर को लेकर हुई है। मैंने सोचा कि आज मुझे भी इसी विषय पर आपसे बात करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत इस बात से करता हूं कि आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर मैं अपनी पत्नी की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से और अपनी ओर से विश्व की समस्त महिलाओं को प्रणाम करता हूं। मित्रों, न तो मैंने शुभकामनाएं दी हैं, न मैंने बधाई दी है, बल्कि जानबूझकर मैंने उन्हें प्रणाम किया है। और मैं माफी चाहूंगा कि यदि आप लोगों में से किसी को कोई एतराज हो तो यह प्रणाम आप सबकी ओर से भी मैं विश्व की समस्त महिलाओं को करना चाहूंगा। मित्रों, ऐसा क्यों? बहुत सीधी सी बात है और बात यह है और जिसे मैं बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से और सच पूछे तो पूरी ईमानदारी के साथ महसूस करता हूं और मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे अपने व्यवहार में ला भी सकूं। और मित्रों, वह यह कि मैं हूं क्योंकि मेरी मां थी, मेरी मां थी हैं इसलिए क्योंकि मेरी नानी थी, मेरी नानी इसलिए थी क्योंकि उनकी मां थी। कुल मिलाकर यह कि हम सबका अस्तित्व सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम सबकी माताएं रही हैं और भी जो हमसे पहले के लोग रहे हैं वे भी सिर्फ इसलिए अस्तित्व में आए हैं क्योंकि उनकी भी माताएं थी। यानी कि यदि हम जरा भी संवेदनशीलता के साथ समझने की कोशिश करें, मित्रों मैं जानबूझकर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं संवेदनशीलता के साथ, तो पता लगेगा कि हम सबके अस्तित्व के केंद्र में कोई न कोई महिला ही है। और अफसोस की बात यह है कि जो हमारे अस्तित्व के मूल में है उसी के लिए हमें विश्व महिला दिवस मनाना पड़ रहा है। कभी विश्व पुरुष दिवस नहीं मनाया गया, यह अपने आप में ही इस बात का कह लीजिए कि प्रमाण है या यूं कह लीजिए कि कारण है कि क्यों हमें महिला दिवस मनाना पड़ रहा है। और मजेदार बात यह है कि यह केवल भारत के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तो क्या पूरी की पूरी दुनिया में महिलाओं की वही स्थिति है जो भारत में है? नहीं, पूरी दुनिया में वही स्थिति तो नहीं है, लेकिन जितना भी बेहतर बनाया जा सके उस बेहतर बनाने के प्रोसेस में विश्व भी इसमें शामिल है। अदरवाइज सच पूछे तो भारत और एशियाई देशों में, बहुत से दूसरे देशों में स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं है। यह सच्चाई तो यह है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे हमारे यहां स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब है। अगर हम अधिकारों की बात करें, उनके जीवन स्तर की बात करें, निर्णय लेने के अधिकारों की बात करें तो हमारे यहां कोई बेहतर स्थिति नहीं है। हाँ, हमारे ग्रंथों में जरूर दुनिया की सर्वोत्तम स्थितियां हैं और मनुस्मृति में ही यह बात कह दी गई है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, उनकी पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। और एक हम ही हैं, हम बहुत से लोगों में से एक हैं जिन्होंने देवी के रूप में, आप सोचिए कि ईश्वर के रूप में महिला की कल्पना की है या उनके अस्तित्व को स्वीकार किया है। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों हजारों प्रसंग हैं जब हमने दैवीय शक्ति को, स्त्री दैवीय शक्ति को पुरुष देव शक्ति से ज्यादा महत्व दिया है। कभी कभी मैं सोचता हूं फ्रेंड्स कि फिर ऐसा क्या कारण है कि जिसके ग्रंथों में इतनी बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची बातें लिखी गई हैं, व्यवहार में हम सब क्यों उसके छोटे से अंश को भी लेकर नहीं चल पाते। यह बात मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो महिलाओं को भरपूर सम्मान देते हैं, सम्मान ही नहीं देते हैं बल्कि अपने जीवन में उसी तरीके से आचरण भी करते हैं। लेकिन जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो पुरुष वर्ग है, कहीं ना कहीं अभी भी एक पुरुषवादी जो अहम भावना है या जो वर्चस्व की भावना है उससे कहीं ना कहीं संचालित है। दोस्तों, अभी हम लोगों की 15 दिन की क्लासेस थी, उसमें एक स्टूडेंट थे जो कैमरून और केन्या में नौकरी कर रहे थे, वो क्लास के लिए यहां आए थे। उन्होंने एक बात बताई और क्लास के सामने ये बात बताई कि अफ्रीका के बारे में चाहे दूसरों की धारणाएं चाहे जो भी हों, अच्छी धारणाएं नहीं रखते हैं। लोगों को लगता है कि वहां के लोग असभ्य हैं, गरीब हैं, जंगली किस्म के हैं, इस तरह की धारणाएं बना लेते हैं लोग, अनावश्यक ही बना लेते हैं। तो उन्होंने बात कही कि नहीं, ये गलत है। और जो सबसे बड़ी बात कही थी कि अफ्रीका में आज भी महिलाओं का इतना जबरदस्त सम्मान है, इतना जबरदस्त सम्मान है कि कोई उन्हें घटिया नजर से नहीं देख सकता। वो रात में कहीं भी बिल्कुल निश्चिंत होकर आ जा सकती हैं और वे अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती हैं। ठीक इसी तरह से दोस्तों, पिछले क्लास की बात है, मुझे नॉर्थ ईस्ट के एक स्टूडेंट की बात याद आ रही है जो खुद में ही लड़की थी। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के बारे में यही बात बताई थी कि नॉर्थ ईस्ट में जो लड़कियां हैं वो दुकानों पर बैठती हैं, कामकाज करती हैं, रात में दुकान बंद करके अपने घरों को जाती हैं। उनकी ड्रेस भी जो नॉर्थ ईस्ट की जनरली होती, जनरली आपने देखा है लड़कों की तरह की काफी ड्रेस होती है, वो पहनती हैं, लेकिन कोई किसी को कोई एतराज नहीं होता, कोई उन्हें देखता नहीं, वो बिल्कुल अपने को असुरक्षित महसूस नहीं करती और सब कुछ बहुत ही सामान्य तरीके से चलता रहता है। यानी कि दिमाग में जो जेंडर का भेद है वह वहां नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। आप देखिए कि इतने लंबे समय से लगातार हमारा समाज जेंडर के लिए, जेंडर समानता के लिए संघर्ष में लगा हुआ है। एक से एक कानून आ रहे हैं, व्यवस्थाएं हो रही हैं, प्रशासन अपनी तरफ से काम कर रहा है, जुडिशरी अपनी तरफ से काम कर रही है, लेकिन सामाजिक स्तर पर चेतना में जो वास्तव में जो अभी तक बदलाव आ जाना चाहिए था वो नहीं आया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है, काफी कुछ बदलाव आ रहे हैं लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। मित्रों, नो डाउट कि अगर हम शारीरिक बल की बात करें, फिजिकल फोर्स की बात करें, तो महिलाओं के पास पुरुष की तुलना में कम है। और शायद वही कभी ऐतिहासिक कारण रहा होगा कि महिला ने पुरुषों से दबना स्वीकार किया, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हें सिक्योरिटी चाहिए थी। वो धीरे धीरे चेतना में बसते बसते अब कुछ इस रूप में आ गई है कि उसे एक तरह से सेकेंडरी ही मान लिया गया है कि वो पुरुषों के अधीन ही रहेगी। एक बात मुझे समझ में नहीं आती फ्रेंड्स, सच पूछिए तो मैं इससे आप लोगों के इसका जवाब आप लोगों से भी चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि मेरी बेटी है और मेरी बेटी जब विवाह होकर जाती है तो उम्मीद करता हूं कि उसे अपने ससुराल में पूरा सम्मान मिले, वो अच्छी तरह से रहे, सुखी हो, पति का प्यार मिले और पूरी अच्छे तरीके से वो अपना जीवन यापन करे। हर पिता का अपने बेटी के प्रति यही भाव होता है। अब सवाल यह है कि मैं अपनी बेटी के लिए तो चाहता हूं, लेकिन जो दूसरे की बेटी, जो चाहे मेरी पत्नी ही बनकर आई हो या मेरी बहू ही बनकर आई हो, मैं उसके बारे में क्या ख्याल रखता हूं? क्योंकि उसका भी पिता है, उनके पिता भी बिल्कुल यही चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भी अपनी बेटी कहीं भेजी है। तो यदि मैं अपनी बेटी के लिए यह कामना करता हूं कि वह सुखी हो, उसे सम्मान मिले, तो बट नेचुरल है कि मैं जिसकी बेटी को या तो पत्नी के रूप में लेकर आया हूं या बहू के रूप में लेकर आया हूं, वो माता पिता भी बिल्कुल इसी तरह की भावना रखते होंगे। तो मैं यहां बिल्कुल ड्यूअल अपनी चेतना के स्तर पर विभाजित क्यों हूं कि मैं दूसरी की बेटी को वैसा नहीं रख पाता हूं और अपनी बेटी के लिए मैं वैसा चाहता हूं? और फिर जो आने वाली जो पीढ़ी है वह भी लगभग लगभग इसी तरह की प्रक्रिया से चलती रहती है। तो अब आने वाली जो पीढ़ी है उसकी चेतना को मैं बदलूं कैसे? मैं बात इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि मेरे लिए चेतना बहुत मायने रखती है और आप लोग जानते हैं कि लाइफ मैनेजमेंट में मैं अक्सर चेतना की बात किया करता हूं, क्योंकि जो सारे संकट पैदा होते हैं वो चेतना से ही पैदा होते हैं। तो अब आने वाली पीढ़ी की चेतना भिन्न हो, समान हो, वो दोनों को एक रूप में देख सके, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मुझे लगता है मित्रों कि यही लाइफ मैनेजमेंट का आज आप मेरी ओर से संदेश यदि मानना चाहें तो मान सकते हैं कि मैं केवल एक काम कर सकता हूं। एक काम ये कर सकता हूं कि मैं अपनी बहू को बिल्कुल वही सम्मान दूं जैसे कि मैं अपनी बेटी को देता हूं। मैं अपनी पत्नी को बिल्कुल वही सम्मान दूं जो मैं अपनी बेटी के लिए अपने ससुराल में उम्मीद करता हूं। उससे होगा क्या? उससे सीधा सीधा जो होगा वो ये होगा कि मेरा जो बेटा है, जो घर के सदस्य है, वो देखेंगे मेरे आचरण को कि मैं अपनी पत्नी से, यानी कि मैं अपने बेटे की मां से कैसा व्यवहार कर रहा हूं। वो देखेंगे कि मैं अपनी बहू से, यानी कि अपने बेटे की पत्नी से कैसा व्यवहार कर रहा हूं। सीधी सी बात है कि जब वो मुझे आचरण ऐसा करते हुए देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से मेरा बेटा भी अपनी पत्नी से कहीं न कहीं उसी तरह का व्यवहार करेगा, अपनी मां के साथ भी उसी तरह का व्यवहार करेगा और उसकी चेतना एक थोड़ी सी बदली हुई चेतना होगी। और ऐसा होगा क्योंकि हम फॉलो करते हैं, हम जो कुछ देखते हैं सच पूछे तो हम उसे ही स्वीकार करते हैं। और ये चेतना की बात मैं इसलिए कह रहा हूं फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि हमारे समाज में जो नारी से जुड़ी समस्याएं हैं वो सच पूछिए तो मूलतः चेतना से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ज्यादातर चेतना से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। नो डाउट कि आर्थिक स्वावलंबन की बात होती है, वहां समाज ने बहुत ज्यादा आजादी दे रखी है और मुझे आश्चर्य होता है, कभी कभी मुझे वो सही भी लगता है, कभी वो गलत भी लगता है। संक्रमण काल में यही चीजें होती हैं कि चीजें धुंधलाती हैं, आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती कि जब रीमैरिज के लिए मेरी पत्नी जब किसी से बात करती हैं और पता लगता है, रीमैरिज के लिए नहीं, वैसे भी अखबारों में ऐड निकलते रहते हैं कि उन्हें वर चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, तो जब मेरी पत्नी उनसे बात करती हैं और पता लगता है कि उनकी लड़की सर्विस कर रही है, और जब पत्नी कहती है कि भाई वो तो उतनी दूर रहते हैं और वो तो शायद सर्विस कराना पसंद ना करें, तो पेरेंट्स साफ साफ ये कह देते हैं कि नहीं, हमारी बेटी सर्विस तो नहीं छोड़ेगी। यानी कि सर्विस नहीं छोड़ेगी भले ही वो विवाह न करना स्वीकार कर ले। दोस्तों मुझे लगता है कि इसके केंद्र में, दिमाग में कहीं ना कहीं एक आर्थिक जो एक संकट पैदा हो सकता है आगे जाकर के, वो भाव छिपा रहता है। यानी कि दाम्पत्य जीवन के प्रति ही एक संदेह का भाव पैदा हो गया है कि पता नहीं आगे कितने दिनों तक ये चल पाएगा। अगर लड़की अपने पैरों पर खड़ी रहेगी तो कम से कम अपनी जिंदगी तो जी लेगी। एक बहुत विचित्र सी स्थिति है दोस्तों जिस दौर से हमारा समाज गुजर रहा है, और ये स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी के बीच दरक गई एक स्थिति है। और इससे पहले कि ये बहुत बड़ी खाई में तब्दील हो जाए, मैं आज अपने इस लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से सभी पेरेंट्स से अर्ज करूंगा कि इस ओर वो ध्यान दें और इस बारे में सोचकर उसे अपने आचरण में लाने की कोशिश भी करें। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। एक मुझे सूचना देनी है, और सूचना ये देनी है फ्रेंड्स कि लाइफ मैनेजमेंट के बारे में, आप अपने जीवन की समस्याओं के बारे में यदि कुछ पूछना चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, हल जानना चाहते हैं, तो आप मेरी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल से बात कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये बात आप लोगों से कही थी और काफी फोन उनके पास आने लगे हैं, लेकिन हमारा भी जो सिक्स्थ बैच था उसमें मैं अपनी पत्नी का नंबर नहीं दे पाया, आखिरी में कुछ स्टूडेंट ने नंबर चाहा तो तब तक क्लास खत्म हो चुकी थी, तो मैं उनकी सुविधा के लिए और आप सबकी सुविधा के लिए मैं उनका मोबाइल नंबर दे रहा हूं। डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का मोबाइल नंबर है 9644624449। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं 9644624449। तो मित्रों इसी के साथ ही आज का यह लाइफ मैनेजमेंट यहीं समाप्त होता है, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।